نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مهدي الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي أكرم الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں: الذین یصلون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبا، کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میرا ذکر کریں اور مجھے یاد کریں، اور پھر اس عمل، اس عبادت کی اللہ تعالیٰ نے جو توصیف فرمائی، تشریف فرمائی کہ کس طرح مجھے یاد کرو، تو خوب الحمدللہ اس کا انداز بیان فرمایا. ایسے یاد کرو اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، لیٹتے بھی، سوتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، بس مجھے یاد کرتے رہو. تو گویا اللہ پاک نے کوئی لمحہ بھی ایسا اپنے بندے کے لیے خالی نہیں چھوڑا کہ جس میں بندہ اللہ کو یاد نہ کرے. وجہ اس کی تو یہ نہیں کہ اللہ پاک کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ ایک کرم اور خاص کرم اللہ نے خصوصاً اس امت پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں، جس حالت میں بھی بندہ ہو، اس کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. یہ اس کا کرم ہے، اس کی فضل ہے، اس کی عنایت ہے. جو اس بات کو سمجھ جائے سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا نہ سمجھے، بس اتنی بات ہے. قرآن میں اللہ نے بہت فرمایا کیا کہ کوئی کیفیت، کوئی حالت بندے کی ایسی میں پسند نہیں کرتا کہ جس میں اس کو بخش نہ دوں. آپ نے جن ذکر کی بات کی، بخشش کیسے ہو گئی؟ تو میرے بھائی، ذکر کا مطلب بھی بخشش ہی ہے، اور کچھ نہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے بندے پر کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایسے اعمال نصیب فرما دیتا ہے کہ جس سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن بندہ جو ہے وہ اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے کہ وہ یقین تو کرتا ہے اللہ کی بات کا، لیکن جھجکتا بہت ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں تو بھی اتنے گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں، میں گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو شرمندگی سے میرے پانی پانی ہو جاتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور سوچ بھی نہیں سکتا. وہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تیری بخشش کر دی، سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، بس الحمدللہ. بندہ جو ہے اس میں جھجکتا بہت ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے یقین بھی کر لیتا ہے، سوچتا ہے یار کیسے میری بخشش ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاں یہ وجہ اس کی کیا ہے بھائی، اتنی رحمتیں کیوں ہیں، اتنا فضل کیوں ہے، اتنا کرم کیوں ہے؟ خاص ہمارے میں کتنی چیز نہیں ہے، اتنی امتیں گزر چکی ہیں، کسی امت کے ساتھ اللہ نے ایسے انعامات نہیں رکھے. खास जो वजह है अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, तो उसी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक जो है उसके हबीब से है, बस ये उनके करम की वजह से है। अल्लाह पाक के इनामात जो हमें अता फरमा रहे हैं और मिल रहे हैं, वरना कहाँ, पूरी उम्मतों को उठा के देखें कितना बड़ा अल्लाह ने इनाम दिया है कि अल्लाह पाक ने हमें इस उम्मत के साथ जोड़ दिया, नबी करीम की उम्मत में हम उम्मत ही बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। लेकिन ये इनाम ये दुनिया में ख़त्म नहीं होता, आप सोचने की नस्बत का जो इनाम है ये नहीं कि दुनिया में ख़त्म हो गए, यही इनामत मिलेंगे, तो आखिरत तक क़यामत तक और हशर तकसीम देखेंगे लोग कि आपके साथ नस्बत रखने का क्या हाल है इंसान का। सारे हशर के मैदान में जिस वक्त और साल गुजर जाएगा, साल साल गुजर जाएंगे इंसान को इंतज़ार होने में, कोई हिसाब किताब तो शुरू हो, कोई फैसला हो, कोई आर पार लगें कि इधर जाएँ उधर जाएँ, क्या मामला है, स्टक हो गया मामला सारा, पसीनों में डूबे होंगे, सूरज चमक रहा होगा, ज़मीन तप रही होगी, ना कोई फरियाद, ना कोई लेना, ना कोई देना, एक सीन होगा क़यामत में, और पता ही नहीं कब होगा फैसला, और सब गुजर गया ठीक होगा, बस बंदा बेजारी में खड़ा होंगे हम सब, कुछ पता नहीं किधर, तो आखिर फिर सोचेंगे भाई कुछ तो करें, तमाम भागेंगे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास कि भाई आप तो सफ़ी अल्लाह हैं, सबके बाप हैं, चलो ही भागो उधर चले, कि खुदा के वास्ते अल्लाह से आप जिस सिफारिश करेंगे कुछ फैसले कर दें, या इधर जाएँ या उधर जाएँ, इससे तो निकले हम, इस हालत के अंदर खड़े हैं हम लोग। तो उधर से जवाब आएगी नफसी नफसी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो बस में है ही नहीं, इसको जलाल में होगा अल्लाह पाक उस वक्त, इतना जलाल होगा अल्लाह, क्या हैबत होगी उस वक्त, किस शान में अल्लाह होगा सब, जो देखे नहीं गए शान अल्लाह की, हम तो रहमत नहीं देखते रहे अब तक, गज़ब गज़ब क्या अल्लाह का अजीब शान के अंदर नज़ूल होगा सब। दूर जाओ आगे बस से ना, हर नबी के पास इंसान जाएगा जवाब क्या होगा, हज़रत नजी अल्लाह के पास जाएंगे तो नफसी नफसी, खलील्लाह के पास जाएंगे तो नफसी नफसी, इन्हीं अल्लाह के पास जाएंगे तो नफसी नफसी, ज़िबिल्लाह के पास जाएंगे तो नफसी नफसी, रूह अल्लाह के पास जाएंगे तो नफसी नफसी, और किस बुलंद दर्जे के अल्लाह से, अल्लाह को वो अंबिया हैं जिन अजीम अंबिया अल्लाह ताला हैं, जिनकी किस्से आप हमने कुरान में पढ़े, किस तरह अल्लाह को मोहब्बत और क्या क्या उनके मकाम और दर्जे अल्लाह ने नवाजा, उनको कैसी हिम्मतें थी उनके, अल्लाह ने अलकाबात ही बता रहे हैं उनके इतने ऊँचे। तो भाई फिर क्या करें, चलो अब सबको देख लिया है, तो सिर्फ़ अल्लाह को भी देख लिया हमने, और खलील्लाह को भी देख लिया, हज़रत अल्लाह को भी देख लिया, नजी अल्लाह को भी देख लिया, कलीम अल्लाह को भी देख लिया, रूह अल्लाह को देख लिया, अब तो एक ही रह गया, और वो कौन है, हबीब अल्लाह, उसी के पास चलो भाई, सुभान अल्लाह, सब जो आएगी दुनिया के पास पहुँचेगी अल्लाह, वहाँ से क्या जवाब आएगा, नफसी नफसी नहीं, उम्मत ही उम्मत ही उम्मत ही, किस कदर मोहब्बत का अंदाज़ा लगे, होया कि मान रहा हूँ तुम सबकी बातें सारी उम्मतों अंबिया की, लेकिन हवाला अपनी उम्मत का देंगे नहीं, बस मैंने बात अपनी पहले उम्मत की करनी है, उनको बात है बस, उस लिए फिर हदीस में आते हैं अल्लाह क्या शान उस वक्त शान नजर आएगी, अल्लाह की भी और अल्लाह के हबीब की उस रोज़ देखेंगे, का शान वाला नबी था जिससे हमारा ताल्लुक था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फिर सजदे में पढ़ेंगे, कहते हैं इससे तवील सजदा कभी किया नहीं होगा, और हम्द और तारीफ जो अल्लाह ताला की करेंगे इससे पहले ना किसी ने की होगी ना हो सकती है तारीफ, सुभान ऐसी तारीफ होगी तो अल्लाह सुभान कहेंगे ऐ मेरे हबीब सर उठाओ सर उठाओ, क्या चाहिए, कहते हैं बख्शिश उम्मत की, कहते जा इतने मैंने निकाल दिए, तादाद देंगे अल्लाह पाक, फिर सजदे में फिर अल्लाह से वही मांगना, अल्लाह कहे मेरे हबीब सर उठाओ बख्श तो दिया, कहते नहीं, कहता चल इतने और से, फिर सजदे में गोया कि आप सजदे में जाते रहेंगे, अल्लाह ताला तादाद के मुताबिक बख्शिश करते रहेंगे। आप कहेंगे नहीं, सजदे से उठूंगा। हत्ता के जब अल्लाह ताला फरमा देंगे तेरा एक भी उम्मती जहन्नुम में नहीं है, सबको निकाल दिया मैं, तब अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाएंगे। तो ये है बात, ये कमाल। हमारा कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं। हम क्या समझते हैं, ना हमारी नमाजें ना हमारी इबादतें। बस एक ही चीज़ है जिससे हम बहुत नखरे टखरे के अंदर, वो क्या है, सलाम, ताल्लुक है हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी से हम भाग रहे हैं पीछे, उस निस्बत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उसको तो मजबूत करना चाहिए उस टाइप को। और कितना अच्छा रिश्ता बताया अल्लाह पाक ने। आज जो वक्त है तुम्हारे पास, अल्लाह फरमाते हैं इस चीज़ को जितना ज़्यादा मुझसे मजबूत करोगे तो उसी कदर तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ मेरा बर्ताव वहाँ क्या होगा, क्या शान होगी मेरी कहानी। तुम मेरे रहमतों को देखोगे, हश्र में देखोगे, पुलसरात पे देखोगे, हर मुकाम पे जहाँ जाते चले जाओगे हश्र में देखोगे, हर जगह पर जहाँ जाओगे मेरी शान नजर आएगी तुम्हें। जान मोहम्मद बिखरी होगी नूर की तरह पूरी कायनात के। उस वक्त पता चलेगा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ मज़ा आ गया, अभी हमने दुनिया में नहीं साथ ताल्लुक को मजबूत किया था। गाली ही पड़ती थी, मजाक उड़ाते थे, लेकिन आपकी सुन्नतों पर अमल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत करने के लिए एक रिश्ता बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इबादत नहीं बताई, एक रिश्ता। वो क्या है, सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वक्त है दोस्तों, औरत और मर्द गौर से सुन लें, यही सबसे बड़ा इम्तहान है। नमाज पढ़ के आपको कोई नहीं रोकेगा, कुरान की तलावत से आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई भी दीन का आप काम कर लें आपको कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन जहाँ सुन्नत रसूल सब पर आप चलना शुरू करेंगे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, घर खिलाफ हो जाएगा, बाहर खिलाफ हो जाएंगे, इधर खिलाफ हो जाएगा, उधर खिलाफ हो जाएंगे, वहाँ पर मुखालफत होगी आपकी सिर्फ एक जगह पर, वह तबाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वहीं से दर्जे बनेंगे जो अल्लाह तक पहुंचाने वाले इंसान को, दोनों चीज़ें वहीं पर होंगी। अब ये हमारे पर है कि हम इस पैगाम को समझ जाएं। समझते हैं, पता सब है हमें, ये नहीं किसी मुसलमान को पता नहीं इस बात का। हर औरत और हमर जानती है, अपने नफ्स के बहानों पर चलते हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो कानून बन गया अल्लाह के यहाँ, कानून बन गया। नंबर एक, जब तक जिंदगी एक चीज़ पर मेहनत करें हम लोग अपनी आखिरत और हश्र को देखते हुए कि वहाँ कब काम किससे निकलेगा, काम किससे चलेगा, एक ही ज़ात और हस्ती होगी। सब नबी पीछे हो जाएंगे, सब उम्मतें पीछे चले जाएंगे। अल्लाह कहे खबरदार कोई नहीं जा सकता जन्नत में, सबसे पहले जाएगी तो मेरे हबीब की उम्मत जाएगी। लाइन पे लोगों पीछे लोग, पहले आने वाले पीछे जा रहे हैं, बाद में आने वाले है शान। अल्हम्दुलिल्लाह जा नहीं सकता कोई एक शख्स भी जा सकता, कितने मुत्तकी उस उम्मत का आदमी हो, कितनी गहरा मुत्तकी हो, लेकिन क्या अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो जाएगा कौन सा नबी मोहम्मद ही जाएगा। जब सोचें ऐसे नबी से ताल्लुक अल्लाह ने दे दिया हमें, तो हम उस नस्बत को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, पीछे हटा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर, थोड़े से खौफ से, थोड़े से डर से, हालांकि कुछ भी नहीं है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। वो खौफ और डर रुकावटें जो है, जब इंसान करता है ना उस पर तो ओह सारे खौफ निकल जाते हैं। मैं खाम कर डर रहा था इस बात से, ये क्या बात थी यार, इतना वक्त मैंने ज़ाया कर दिया। ओफ अल्लाह, अगर मैं आज पहले प्रैक्टिस कर लेता इस चीज़ को तो मेरे लिए क्या मना, कितने मेरे नाम मैंने ज़ाया कर दिए जिंदगी के। उस ख्याल मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे लोग क्या कह देंगे, पता नहीं ज़माना मुझे क्या कहेगा, क्या उसके शोर के अंदर एक खौफ छुपा होता उस चीज़ का। अगर तूने ये अमल कर लिया ना, नहीं सुन्नत पे इस पर अमल कर लिया ना, देख तेरा हाल क्या होता है, देख तुझे पता क्या चलता है, देख तेरा ये होता है। वो जब कर लेता है, अरे ये तो मजे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सुकून, इतनी राहत, ये तो चीज है। ये हम मानते यार बड़े सख्त गलती की, भाई होश संभाल ले हमें इस चीज पर, समझ जाए इस चीज को। जिंदगी सुबह से लेके शाम तक इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज यही तो हमें अल्लाह ने एक फील्ड दे दी। वरना अगर फर्ज कर देता हर चीज को, ये भी फर्ज है, ये भी फर्ज है, फिर तो करते उसमें स्वाब क्या होता है, उसमें स्वाब क्या होता, वो तो फर्ज वो डंडे की बात है। क्या कमाल है अगर आप फजर पे आ रहे नहीं आएंगे डंडा, कमाल तो यह है कि कहां कुछ नहीं जा रहा और सर पे इमामा आ जाए, सुभान
अल्लाह।
इसको मोहब्बत कहेंगे जबरदस्ती कहेंगे, मुझे बोले जबरदस्ती है ही नहीं। आपका जिस्म गवाही दे रहा है कि भाई मैं तुझे गवाही देता हूं इस चीज की तुझे मोहब्बत है, क्योंकि तुम खुद तो ये काम तुमने उस वक्त किया है कि पता है इसके लिए अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो बेनता हंसी है, मजाक है, सब कुछ है। और उस पर यह भी है कि फर्ज तो नहीं है तुम ये इसको लगे हो यार इतनी गालियां खा रहे हो, इतना तमाशे बनवा रहे हो, इतना फला कर रहे हो, ये फर्ज तो नहीं है ना। सुभान अल्लाह, फर्ज तो नहीं है, मोहब्बत तो है ना। मोहब्बत का जवाब क्या देंगे आप, इसका जवाब क्या है? तो यही एक आजमाइश अल्लाह पाक ने रखी है, ये एक टेस्ट रखा है। ड्रामे बहुत, मोहब्बत के ड्रामे आप करा लें जितने कराने, होते नहीं ड्रामे, बहुत होते हैं दावेदार जो करते हैं मोहब्बत के, अमल कहीं नहीं। जिस चीज पर, जिस चीज को मियार बनाया है अल्लाह पाक ने मोहब्बत का, वो नहीं यार ये तो रहने दे बस, हाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह इस पर तो खूब मजे हो रहे हैं, जितना चेक करा तमाशे जितने दुनिया को दिखाएंगे पूरे तमाशे, सब दुनिया तमाशे देखती महसूस होती है कि देखो भी क्या है। अल्लाह वाले फिर हंसते हैं कि देखो इनके दिमाग खराब होने लोगों के, फिर उनके लिए दुआएं करते हैं अल्लाह इनकी आँख खोल, ये किसको धोखा दे रहे हैं, क्यों मजा तो ये है। सुभानअल्लाह, मुखालफतें जमी हों, मुखालफतें खड़ी हों और मोहब्बत तकाजा कर रही हो, डूब जा देखी जाएगी जब अब जंप मारे, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल समझी भी नहीं मानी है पैगाम अभी, इश्क फरमूद है कासिस से सबक गामे अमल, अक्ल है महवे तमाशा लभे बाम अभी। हुक्म आया ने हजरत इब्राहिम सलाम कि यह आग है, उस आग का तो आपने किस्सा सुना होगा, पता नहीं नमरूद ने कैसी आग जलाई थी, वो क्या कि मीलों दूर से चिड़िया भी आती थी वो भी जल जाती थी, एक इंसान के लिए उस आग को तैयार किया गया था, कितना खौफ कितना डर पैदा किया उसने, उधर गया था बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, डूब जा नहीं सोचा कि क्या है, फरिश्ते हैरान है आसमान पर, जला ये कैसे इंसान पैदा कर दिया तुम, ये क्या इंसान जा रहा है, इश्क था बेखदर, यही तो वो हजरत इब्राहिम थे, और ये तो अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें तो उम्मत हमें ये आग हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह, जिसकी मोहब्बत में हम कर रहे हैं उसके मुकाबले आग कुछ भी नहीं है, अगर वो आग भी जल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत में कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, धोखे वाले जिंदगी गुजारने से क्या फायदा, जिस नबी से हमारा आखरत में अशर में हमारा ताल्लुक जमेगा पता चले, तो यहां तो रास थपे हुए ना, नहीं जी ये भी आशिक हैं, ये भी बस बहुत हैं, ये तो फला बुलंद है, ये तो फला जी है, सब पर्दे में है, लेकिन वहां तो पर्दा फाश हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, हिसाब किताब हकीकतें जहर हो जाएंगी। आ जाओ भाई, एक चीज को पकड़ ले आदमी किस्सा खत्म, बस क्या पकड़ना है, सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात है, ये तो है, ये तो टेस्ट है, खौफ भी होगा, डर भी होगा, रुकावट होगी, परेशानी होगी, सब कुछ होंगे, नाकामी होगी, नाकामी होंगी उस अमल करने से पर, उस अमल करने पे दुनिया नाकामी नजर आएंगी आपको, उधर क्या पता कि आपकी कितनी कामयाबी हो रही है उस वक्त उस पर अमल करने से। तो ये बात थी जिक्र की, हकीकत में मैं कह रहा था इस वजह से इसके सदके से अल्लाह पाक ने हमें जो है ये जिक्र की तौफीक दे दी, और फिर अल्लाह ने ऐसी तौफीक दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते चलते, तो वजह इसकी क्या बताई, वजह उसकी ये है कि अल्लाह ताला अपने हबीब की उम्मत का हर वक्त बख्शिश का सम्मान करना चाहता है, उसे क्या मानी बख्शिश के, मैं बख्शूं इस बहाने से अल्लाह ताला बख्शना चाहते हैं, कि वहां भी तो निकालना ही है ना दोजख से इनको, तब भी तो वो आएंगे ना मांगने, तो पहले ही क्यों ना इनके इंतजाम को जितनी बच सकते हैं बचें। लेकिन अफसोस की बात, हमने जिक्र को भी नहीं समझा, हाय जिक्र को भी नहीं समझा, क्यों करें जी हम, ये क्या बात हुई फला, ये तो सोचो अल्लाह पाक ने कह क्या रहा है, कि मैं तो ये चाहता हूं कि तो कोई लम्हा भी तेरा ऐसा ना हो, हत्ता कि सोते वक्त भी तू ऐसा ना हो कि मुझे याद ना करो, क्योंकि हर वक्त इतने गुनाह होंगे, इतने गुनाह होंगे, इतने गुनाह होंगे कि जिसका तसव्वुर ही ना कर सकोगे, हर सांस के साथ जिस तरह सांस का मिट्टी जा रही है ना अंदर, इस तरह गुनाह जाएंगे हमारे अंदर, जिस हदीस में आता है ना कि जिस तरह बारिश के कतरे टपकते हैं ना, इस तरह फितने टपकेंगे आसमानों से। ये जमाना नजर नहीं आ रहा, फितने टपकेंगे कि सुबह इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को काफिर होगा, सुबह मोमिन होगा। मोमिन का मेयार अल्लाह के नजदीक है। मोमिन की ना हर नमाजी का बख्शिश नहीं है, ये भी सुनना है, ये भी एक टॉपिक है बहुत बड़ा। हर नमाजी बख्शिश का मामला नहीं है, बख्शिश हर नमाजी बख्शिश है, नहीं नहीं, हर नमाजी की बख्शिश नहीं है, बख्शिश नहीं है। फितने ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे फितने होंगे कि हमारी इबादत को उड़ा के ले जाएंगे, हमारे सजूद को खत्म कर देंगे, हमारे कुरान के सफात को उड़ा देंगे, ऐसे फितने होंगे। तो उस वक्त अल्लाह पाक कह रहा है एक चीज तुम्हें बचाएगी कि मेरे जिक्र से गाफिल ना होना, तुम जिक्र से गाफिल ना हो, तभी कहेगी चलते फिरते उठते बैठते सोते एक तस्वीर। और ये वही जमाना है, देखिए कहां नाजिल हुई है, क्या सहाबा कराम के लिए था, लेकिन उनके लिए था यही, उनका मुकाम और था इस तरह जिक्र करने पर। लेकिन हमारा जो ताल्लुक है जिक्र करने पर क्या है कि हम फितनों से बचें और बख्शिश हमारी हो जाए। हदीस में आता है, तजीब होता है कि कसम खुदा की कि ये इतनी बड़ी महफिल मिल कैसे गई इस जमाने में। मैं कसम खा के कहता हूं वल्लाह इंतहाई दर्जे का ताज्जुब होता है, इंतहाई दर्जे हैरानगी होती है कि या अल्लाह इस जमाने के अंदर ये जिक्र की मजलिस मिल कैसे गई है, हम कैसे जिक्र में बैठ गए। ये मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं काम, इसका हैसियत क्या है, इस अमल क्या, अल्लाह के यहां मुकाम क्या है इस दौर के अंदर। खुदा की कसम आदमी बस कहते यार ये क्या है, किस तरह जिस तो आदमी का अलार्म हो जाएगी इसको, ये मिलियन ट्रिपल हो गया, यार ये पैसे आ कहां से, उसाई दिन जिंदगी सोचेगा यार इतने पैसे मेरे पास कैसे आ गए, अच्छा मैं तो सोचा भी नहीं था यार कितने मिलियन मेरे पास कहां से आ गए, सोचेगा नहीं सोचेगा। तो एक ऐसे जिक्र करने वाला जब अल्लाह की जिक्र की मजलिस में बैठता है और जो शऊर और आंख रखता है वो कहेगा यार ये क्या हो गया, इतना इनाम मेरे पास कैसे आ गया। हदीस जिस वक्त लोगों का लाख जिक्र में जमा होकर लाख जिक्र करते हैं, जिसको मजलिस जिक्र कहा जाता है, हल्का जिक्र कहते हैं, हल्का जिक्र है ना भाई, नहीं जब बैठते हैं उस जिक्र में बैठते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि जैसी मजलिस बैठती है तो मेरे खौस खौस मलाइक हैं, खौस उनको कोई काम नहीं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं और मेरी रहमत उनको ढांप लेती है। ऊंचा ऊंचा बोलो उस पर पता चल रहा था, फरिश्ते भी सुन के कदर करने वाले लोग हैं, हमें तो पता ही ना, मैं तो कसम खा के कह रहा हूँ हमें तो पता ही नहीं हम बैठे कहाँ हैं, ये कैसे मिल गई इतनी बड़ी दौलत हमें, क्या करती है अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह ताला की जब रहमत ढांप लेती है फिर मैं उन पर सकीना नाजिल करता हूँ, क्या डिस्क्रिप्शन दी अल्लाह पाक ने, क्या करता हूँ सकीना नाजिल करता हूँ। और फरमाने फिर अल्लाह के फरिश्तों का हमें क्या पता क्या है, और वो फरिश्ते क्या होंगे जो अल्लाह के खास मस्जिद में बैठते होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हम फरिश्तों की बात नहीं कर अल्लाह पाक, जो खास उसके मस्जिद में बैठने वाले फरिश्ते होंगे मलाइक, अल्हम्दुलिल्लाह उन मलाइक में अल्लाह तमाम खत्म करता है बातें, वो कहता है मैं उस जमात का जिक्र कर रहा होता हूँ, बातें कर रहा था। कारी साहब क्या कह रहे थे, हाजी साहब क्या कर रहे थे, इकबाल साहब क्या थे, फलां साहब क्या थे, ना इतने बड़े मजमे के अंदर रब उन फरिश्तों को बैठ के, और फरिश्ते जो अल्लाह बात कर रहे थे वो भी उनकी बातें कर रहे हैं। क्या तीर मारे आपने और मैंने क्या तीर मारा, कोई चीज तो होगी ना भाई, कोई अमल तो होगा ना जिसका ये इनाम मिल रहा है, देखें आप सब कोई अमल तो है ना, कितना मफकूर, इतना छोटा हो गया ये अमल, इतना छोटा हो गया कि जर्रे की कीमत है लेकिन अल्लाह के जिक्र की कीमत नहीं है। मैं असर के बाद गुजरा तो हमारे इमाम साहब माशाल्लाह जिक्र के बारे में कुछ हदीस पढ़ रहे थे, तो गुजरते गुजरते उनकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी। बड़ी मोहब्बत के साथ वो जिक्र की मजलिस, जिक्र की अहादीस पेश फरमा रहे थे। तो चलते चलते मेरे कान में आवाज़ पड़ी, तो आवाज़ क्या पड़ी कि जिक्र करने के 100 फवाइद हैं जो बयान किए हैं। मैं छटका एकदम, मैं निकल रहा था तो इमाम साहब की जबान से लफ्ज निकले, तो बड़ी मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे, कहते जिक्र करने के 100 इनामात हैं। और किसकी तरफ से है? सब करीम की तरफ से 100 इनामात है। अगर एक एक इनाम को हम चुनने लगे तो मुझे बताएं हाल क्या होगा। तो फरमाते हैं अपने खास मलाइक के अंदर मैं क्या करता हूं, उनका जिक्र शुरू कर देता हूं, उनकी बातें शुरू करता हूं। आगे चले, ये जिक्र की मजलिस अंदाजा लगाए, बुलाने वाले बैठ आने वाले हम हाल क्या मारे। आप तो नेक होंगे, मुझे बताए कि इस मजलिस में आने के काबिल हूं मैं, अंदाज गुना ही गुना हमारे पास, मुझे पता है क्या हमारे पास को VIP है। ये ऐसी मजलिस तो अल्लाह ताला अपने बड़े बड़े औलिया लोगों को चुने, कुतुब गौस हैं, मुजद्दद हैं, हम जैसे ठक्कू पट्टू हैं अल्लाह की मजलिस में, जहां जिक्र अल्लाह बैठ के कर रहा हूं मलाइक के साथ। अहमियत नहीं, खुदा की कसम अंदाजा लगाए हमारे वजूद का, हम मुसलमानों का कितनी बड़ी चीज है, जर्रे के बराबरी में अहमियत नहीं है हमारे अंदर इस अल्लाह के जिक्र की, जर्रे के बराबर। इस उम्मत की बात कर रहा हूं। और फिर क्या इनाम है, फरमाया इन लोगों के साथ बैठने वाला जाकिरीन, जिक्र करने वाला जो होता है, कौन होते हैं? औलिया अल्लाह है। ये जो औलिया अल्लाह है इनके साथ बैठने, इनकी सोबत का नतीजा क्या है कि कोई भी आगे आगे बैठ जाए तो मैं बदबख्त रहते ही नहीं, बख्त रहते ही नहीं। इससे पहले हम पता नहीं कितने बड़े बदबख्त होंगे, क्या क्या गुनाह हमारे गर्दों में लटके होंगे, लेकिन जैसे इस मजलिस में आके बैठे, सोबत में बैठे, अल्लाह ताला ये बदबख्त रहते ही नहीं। आप क्यों परेशान होते हैं जाकिर लोग, मुझे ये बताएं, सोचो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन नहीं है ना। जिक्र करने वाला पहला इनाम देखे कि फरिश्ते उसको घेर लेते हैं। अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फैजुल बारी शेरा बुखारी के अंदर इसकी तफसील लिखते हैं। अब कोई आम छोटा आदमी है, ये वो जाकिर लोग थे, ये कौन है? हम तो मुहद्दिस के हिसाब से जानते हैं ना, कोई शराय लिखी, लेकिन थे क्या बीच में? ऐसी बातें करने वाला वही हो सकता जो जिक्र करने वाला होता है, कोई नहीं लिख सकता ऐसी बात। चलो बुखारी में लिख रहे हैं इस बारे में कि क्या है ये, जो अल्लाह इस हदीस में फरमाया गया है कि फरिश्ते उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं। फरमाया इसकी घेरना है क्या, तुम समझते हो इस चीज को? आपको पता है नशा कश्मीरी कितनी बड़ी जात, कितनी बड़ी कौम थी, कितनी बड़ी चीज थी। एक नक्शबंदी शेख, बहुत बड़े वक्त के शेख थे, उनकी कब्र पर गए, ये बात निकल आई बीच में, मराकबा किया, साहेब नस्बत थे वो, और कश्फ कबूल होता है बाज बुजुर्गों को अल्लाह पाक दे देते हैं, तो उन्होंने जाके नक्शबंदी सिलसिले में खास सी चीज़ होती है, तो उन्होंने जाके मराकबा किया, तो मराकबे में गुफ्तगू होगी कश्मीर साहब से, कहने लगे कि क्या हाल चाल कुछ, कहता हाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जिंदगी में हमेशा ये समझता रहा, भाई एक आदमी होता है ना बात, कि मेरे दिल में हमेशा ये थी कि मैं शाह वलीउल्लाह से ज़्यादा जो है ना हदीसों पे इल्म रखता हूँ, वरना बराबर तो हूँ ज़रूर, बाकी थे तो बहुत दर्जे के आलिम थे, मुहद्दिस थे, उनका कलाम तो जानते होंगे बैठे, तो कहते मेरे दिल में ये हमेशा ख्याल रहा कि शाह वलीउल्लाह से मेरा मुकाम बुलंद होगा, नहीं तो बराबर तो ज़रूर होगा मैं उनके, तो मैं हदीसें पढ़ता था और तफ़सीर करता था। तो कहता जब मैं वहाँ पहुँचा तो सही था, मुकाम बराबर भी नहीं था लेकिन कम भी नहीं था, कहने लगे शाह वलीउल्लाह से थे तो बड़े दर्जे के आदमी, लेकिन दोस्त एक बात बताऊँ तुम्हें कि जब मैं तसव्वुफ की तरफ गया, रूहानी तरफ, तो मैं एक जर्रे के बराबर भी नहीं था उनके, जर्रे के बराबर भी नहीं था। क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की थी जिक्र अल्लाह पर, मैं वहां नहीं पहुंच सकता था। मैं इस तरफ लगा रहा कि जब दूसरी तरफ देखा उनको मुकाम तसव्वुफ में, तो इतनी बुलंदी की मैं जर्रे के बराबर भी नहीं था। तो जिक्र बहुत बड़ी चीज है दोस्त, जो आप जिक्र करते हैं वो ये उनका है, काशिफ अल्लाह बेहतर जानते हैं, बहुत बड़े नाम आप भी जानते नहीं, बताऊंगा नहीं, है बहुत बड़े शेख। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये अनुषा आकाश में जो बता रहे हैं, हालांकि कितने बड़े इंसान थे, कहते हैं कि ये जो है घेर लेना फरिश्तों का, ये क्या चीज थी। तो कहते हैं ये ऐसा है कि जैसे चांद देखते हैं आप, चांद चांद की जो हाला होता है ना, हाला हाला समझते हैं ना, ये जिस आप चांद को देखेंगे तो बहुत कम यहाँ तो चांद देखने में आता है, कभी अपने मुल्क में देखें तो चांद आसमान की तरफ निकला होता है पूरा, तो चारों तरफ एक हाला बना होता है रोशनी का जो पूरे आसमान को घेर लेता है। फरमाया ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस हाले की मानिंद है कि पूरी सतहों को घूर को ना पूरा दायरा, जैसे यहां जिक्र है ना तो पूरी जमीन को घेरे होता है वो। इस हदीस भी है ना कि इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन आसमान भर जाती है, तो अपना मुकश्फ बता रहा है कि सारा जमीन को इस तरह घेरा होता है। और इस तरीके से होता है कि फिर एक मिसाल दी कि जैसे आप पानी के अंदर जितनी जोर से पत्थर मारेंगे, जैसे आप समुद्र में खड़े हैं या दरिया किनारे खड़े हैं, जितनी जोर से आप पत्थर मांगते हैं तो इतराहत होता है समुद्र में लहरों का, वो लहरें फैलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे होता है ना, आप देखेंगे कि इतनी फैलती हैं जितनी जोर का पत्थर होता है, तो लहरें फैलती हैं और जहां जहां वो लहरें जाती हैं वो असर अंदाज होती रहती है उस जगह पर। तो फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह का जिक्र चलता है तो वो जो बताए ना फरिश्ते घेर लेते हैं, तो उसका हाला इतना फैल जाता है, वसी हो जाता है कि सारा उस जिक्र के दायरे में आ जाती हैं सब चीजें। और कहते हैं दुनिया की हायत यही अजीब हो जाती है अल्लाह के जिक्र से। सोच सकते हैं मैं और वो आप इस मजलिस में बैठे, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अब यकीन आ रहा है कुछ जिक्र का, ये नहीं आ रहा कि कितना बड़ा अमल है। आप देखें किस तरह हमारे दिल से देखें आप वक्त निकल गए इस चीज़ की, तो ये उसकी तशरीह ने फरमाई। और फिर दूसरी कि अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, ये कोई कम बात है। रहमत के मुकाबले में क्या चीज़ है, ज़रा जिक्र वालों सोचो, रहमत के मुकाबले में क्या चीज़ है, गज़ब नाराजगी अजाब मुसीबतें अल्लाह की तरफ से परेशानी है, अल्लाह तरफ खिंचाओ, ये रहमत के मुकाबले में ना सारी चीज़ें। तो जब अल्लाह की रहमत ढांप लेती है तो सारी चीजें इसका मतलब सब खत्म हो जाती है। जिस वक्त इंसान अल्लाह का जिक्र होता है, जिक्र करने वाला आदमी, तो वो तो अल्लाह की रहमत में, ना उसमें मुसीबतें ना परेशानी ना तूफान ना कुछ भी नहीं होता उसका, अल्लाह कहता है क्योंकि मेरी रहमत है उसके साथ। निशात बात समझ आ, जिक्र के इनाम समझ आ गया नहीं समझ आया कि अल्लाह का जो जिक्र करता है उसके साथ अल्लाह की ना नाराजगी है ना गजब है ना परेशानी है ना मुसीबत है ना कुछ भी नहीं है। रोता फिर तो रोता फिर, वो कहते हैं उसकी मर्जी है, अल्लाह ताला कहते हैं वो अपना बनाता फिर मर गया लुट गया मेरा कारोबार, लेकिन अगर जाकिर है वो शख्स तो हकीकत में उसको परेशान नहीं है वो शख्स। रोने की आदत पड़ती तो रोता रहे आदमी, लेकिन क्या है कि कभी भी आजमा के देख ले जिंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करने वाला वो परेशानी परेशानी नहीं होगी, सुकून सुकून होगा उसकी जिंदगी के अंदर, ना गजब होगा ना अंधेरा होगा ना परेशानी होगी ना मुसीबत होगी ना अचानक उस पर कोई ऐसी चीज आने वाली पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह का जिक्र जब वाकई अल्लाह का जिक्र करने वाला शख्स होगा जाकिर, और जितनी कसर से जिक्र करेगा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वही है जो अल्लाह बताया कि रहमत ढांप लेती है। और ये आप ये देखें बहुत अमालों में लगे मैं रहमत का नजूल होता है, इतनी रहमत नाजिल करता हूँ, यह है ना बहुत से अमालों में कहते हैं, लेकिन ढांपने का लफ्ज़ कहीं नहीं आया। ये सिर्फ जिक्र की वजह, ढांपने का मतलब है कि बिल्कुल कवर होता है हर तरफ से कि कहीं से भी परेशानी आ ही नहीं सकती उस पर। बोलो इस बात जिक्र करने वाले हैं फिर क्यों परेशान होते हैं, खाओ पिए ऐश करो माशाल्लाह, खूब चूजे खाओ हमले खाओ जो चाहे बिरयानी खाओ, खाओ भी खिलाओ भी लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह, जाकिर को कोई परेशानी नहीं। अल्लाह कहता जिक्र करने वाले को कोई परेशानी, क्योंकि मैंने उस ढांपा है अपनी रहमत के अंदर, बस बदमाशी ना करें लाना तोड़ने अल्लाह के गुनाह ना करे इंसान फिर देखो रहमत। अब ये तो गलत बात है ना, फिर आदमी वो रहमत में कैसा रहा आदमी, फिर शैतानी भी करे गुनाह भी करे फूल बातें करे, नहीं बल्कि जाकिर को तो ये चाहिए, जाकिर को ये चाहिए कि वो नेकियों में इतनी पहल करे इतनी इब्तदा करे नेकियों के अंदर, इस कसरत से नेकी करे कि जिसका कोई इंतहा ही ना हो। शान तो यह है ना जाकिर की, अल्लाह की रहमत में ढका है उसको, क्या कि वो गुनाहों की तरफ जाए। उसके लिए क्या कि वो ऐसी फजूल बातें करे, ये तो बहुत गिरी बात है। जैसे एक बादशाह जो, और बादशाह कासा पकड़ा मेरे दरवाजे कौन है जी, मैं बादशाह हूँ, फार्मूल का जी 10 पाउंड के खैरात तो दो, तसव्वुर कर सकता है कोई? जाकिर का मुकाम तो ऐसे जो खालिक हकीकी की रहमत में ढांपा हुआ हो, अब वो गंदे काम करे, बुरी बात करे, जेब नहीं था उस चीज को। उसकी शान तो यह है कि हर वक्त नेकी की तरफ राग़िब है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त किसी ना किसी नेकी के अंदर मसरूफ है उस शख्स। फिर यह अल्लाह कहता है रहमत है मेरी, उसको तो परेशानी क्या, उसको तो है ही नहीं कुछ परेशानी, है बकवास करता है, रोते पीने की बात ही कोई नहीं है। सही नेकी करने वाला आदमी हो, जिक्र करने वाला हो, अल्लाह के जब खुद बुलवा दे कि मेरी रहमत ढांप लेती है, ये बात समझे। यह है जिक्र करने वालों का स्टेटस दोस्तों, है ना अमली। देखिए फिर तीसरी बात क्या भाई, सकीना नाजिल करता हूँ। से क्या मुराद है सकीना नाजिल करता हूँ? हाँ, कि ऐसा मुतमईन करता हूँ उसके दिल को, इतना मजबूत कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई मेरे शरीफ फैसले पे चलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। ये शान सब जिक्र करने वाले हूँ, इरादा कर लिया आज मैंने ये करना है, और नान जाकिर जिक्र करने वाला नहीं, कुछ समझ नहीं आया, करूं ना करूं, पेशाब निकल रहा है कि इधर भाग रहा है कि इधर कर रहा है, उससे पूछ रहा था फोन, और कुछ जाकिर है उसके दिल में आ गया कि मैंने ये फेल करना है, इस फेल पे खड़ा होना है, दुनिया की कोई ताकत उसको टाल नहीं सकती, वो चंप मारता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह सकीना नाजिल किया है उसके कल्ब के ऊपर, मैंने कुवतें दे दी उसके दिल को कि मेरी शरीयत पे जब चलना जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी, एकदम उस चीज पर अमल करना शुरू कर देगा। ये जाकिर की शान है। ये हिम्मत कौन करता है? जिक्र करता है। कोई आदमी कहता है मैंने शरीयत पे चलना है और मैंने इन गुनाहों को छोड़ना है, करता रहे, लेकिन जिक्र करना शुरू कर देगा, जिक्र के बाद अल्लाह का वादा है कि मैं उसके क्या करता हूं, ऐसा सकीना दे देता हूं उसको, इतनी मजबूती देता हूं उसके कल में, इतनी ताकत देता हूं, बस इरादा आया नहीं उसने किया नहीं। मुझे इसमें पहले बता रहा था ये सब शान किसकी है, जिक्र करने की बरकत है, कुछ नहीं ना, तो दुनिया तो जिस वक्त भाग रही होगी कि दज्जाल कौम आएगी, ऐसे लोग आएंगे, जो हालात हम देख रहे हैं, सपाट हुई होगी दुनिया हर तरफ, दो 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 रुखी हुई होगी दुनिया उस वक्त, तो उस वक्त कामयाब वो शख्स होगा, अल्लाह के दीन पे चलने वाला वाहिद वो जमात होगी, वो हस्तियां होंगी, वो लोग होंगे जो जिक्र करने वाला, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुउदन, जो चलते भी जिक्र करते हैं, सोते भी जिक्र करते हैं, चलते भी बैठते भी जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो कौन वाहिद देखेंगे आप जिसे प्रैक्टिस करने वाली कौन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। बस दिल में ख्याल आए, आप यहां एक सबक सीखिए, जब दिल में ख्याल आए कि मैंने ये काम करना है, आप जिक्र करने वाले हैं अंदर, खौफ नहीं, फिर सुबह से शुरू अल्हम्दुलिल्लाह, जो फेल हमारा सुनत के साथ नहीं हो रहा सुबह से शुरू हो जाए, कि डरने हमें डरना, हम तो अल्लाह का जिक्र करने वाले आदमी हैं, सकीना हमारे दिल में अल्लाह ने उतारा हुआ है, और ये मुकाम अल्लाह बुढ़ापे में दे दे, जवानी में दे दे, मरने से पहले दे दे, 80 साल में दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परवाह नहीं, जब भी ये मुकाम मिल रहा हो फौरन हासिल कर लो, निशानी वही है सुन्नत रसूल परतो बन जाए बिल्कुल तस्वीर आप की हदीसों जो वाकयात में याद किए जाते हैं कि आप ये फरमाते थे, आप ये फरमाते थे, आप ये फरमाते थे, आप ये फरमाते थे, आप ये पहनते थे, ये करते थे, बस वो उसकी तस्वीर बन जाए आदमी। ये कौन कर सकता है? सिर्फ मुझे बोलो जिक्र करने वाला हैरान कर देते हैं आदमियों को, समझ नहीं पाते यार कर क्या रहा है ये, हम इतना जोर लगा रहे हैं इसको पीछे हटाने का, ये आगे जाया जा रहा है। तो उनको पता नहीं कि अगर आपने कामयाब होना तो एक काम करें, जिक्र उसके दिल से निकाल दें, वो निकाल नहीं सकता। बात समझ गई मेरी बात का? आदमी अमल कर रहा होता है ना तो लोग पीछे या उस अमल से हटाना चाहते हैं उसको, ये जरूरी नहीं है यार क्या तुम काम कर रहे हो, पीछे मक्खी की तरह लगे होते हैं पीछे शैतान, ठीक है ना, अब वो डरा होता है, उन्हें क्या पता कि किस चीज ने उसको रोका हुआ है, वो क्या चीज है, वो सकीना है जो अल्लाह ताला ने सीने पर उतारा है उसके। हाँ उसको हटाना चाहते हो ना, फिर तो एक ही चीज है, एक ही चीज है, उसके सीने से जिक्र निकाल दो, जो कि निकल ही सकते ही नहीं जिक्र। तो जिक्र कैसी चीज है? जिक्र का मामला है कि घटता नहीं है, ये बढ़ता है। हम तो वैसे ही डर जाते हैं, साहब पता नहीं मेरा जिक्र पीछे जा रहा है जनाब, मैं ये अपना फिक्र ना करो, इंशाल्लाह पक्के जिक्र करो, गुनाहों से बचते रहो, जिक्र पानी की तरह बढ़ता चला जाता है। तो खासियत है जिक्र, अल्लाह का शुक्र ये करो, अल्लाह का शुक्र ये करो, मेरे हजरत आठ दवाएं दस दफा कह देते, शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर, तुझे जिक्र की तौफीक हो गई है। तो वो जानते थे ना जिक्र क्या चीज है। अल्लाह का शुक्र ये करो कि हमें जिक्र की तौफीक नसीब होगी, ये सबसे बड़ी बात है। कहीं नहीं मार खा सकते आप इंशाअल्लाह, हदीसें बता रही हैं। आगे क्या था, अल्लाह ताला क्या करते हैं अपने खास मलाई के अंदर उनका जिक्र करता है। किसका जिक्र होता है मुझे बताया, चोरों का, उचक्कों का, आम आदमियों का नहीं। वो मुकाबला, ये हदीस में इशारा मिलता है, मुफसिन लिखते हैं क्या इशारा है कि ये मुकाम है जहां पर अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को चुनता है, कुतब गौस मुजद्दिद अब्दाल यहां चुने जाते हैं जिक्र के अंदर से। ये मजलिस है, बाहर से नहीं होगा, आप याद रख लें। ये जुलूस जलसे जितने कहीं नहीं कुछ होगा, कहां से चुने जाएंगे, ये हदीस बता रही है किस जगह से चुने जाएंगे, आप में से। आप अगर आप नियत करते हैं कि मेरी जिंदगी का हर सांस जो तबाए रसूल पर होगा, ना फरमानी मेरी जिंदगी की मौत होगी, जिंदगी को मैंने एक रुख खत्म कर दिया, अल्लाह की कसम उसी वक्त उस मजलिस में आवाज आएगी कि मैंने इसको अपना गौस चुन लिया। इतने हम बेवकूफ हैं, हजरत से कह रहा हूं कि हमें हमारे सरों पे ताज पहना दिए गए, गोल्डन ताज, क्या पता कि जिक्र करने का कितना ना, हमारे सरों पे अल्लाह ने गोल्डन ताज बना दिए, और काश अगर हम गुनाहों से बच जाए, ये हिम्मत हम कर लें, क्योंकि नफ्स शैतान का तो मामला चल रही है ना। इतने इनाम दे दिए अल्लाह पाक ने, जैसे एक बादशाह आप किसी को दे दें और बादशाह का बात उसमें गंदी आदतें, बदमाशी करता हो और नफ्सतने का ख्याल ना करता हो और जो हिसाब करता हो, अब उसको बादशाह तो मिल गई है लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, अगर उन चीजों से बाज आ जाए तो कितना बड़ा बादशाह बन जाए। मिसाल समझेंगे मेरी, बादशाह तो बन गया वो, उसको तख्त दे दिया, उसको क्राउन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो करता है बदमाशी है और जनाब ये सब कुछ करता है, तो रायता आ जाती है उससे, क्या इसको निकालो बाहर करो, परेशान होती है, कामयाब नहीं चलता, होता बादशाह है। इसी तरह ये कि अल्लाह पाक ने हमारे सरों पे क्राउन रख दिए हैं अपनी मोहब्बत और कुर्ब के, लेकिन क्या है कि अगर कहीं हम समझ जाएं दो चीजों पर, गुनाहों को छोड़ दें, इत्तबा रसूल को जिंदगी बना लें, और नाफरमानी को जड़ों से निकाल दें, ख्वाहिशात नफसानी के जड़ से निकाल दें, कुचल दें, कुचल दें उसको। एक खास लफ्ज है जो सख्त किस्म के औलिया अल्लाह के लफ्ज है खास, कि कुचल दो नफ्स को, कुचल दो उसको, टुकड़े कर दो नफ्स की ख्वाहिशात को, तो उधर एकदम अलान होगा। ये बातें और क्या हो रही हैं अल्लाह की फरिश्तों से, यही तो होती हैं। ये आज जो आज मजलिस आए थे ना लोग, उसमें से मैं पांच आदमी को अब्दाल बना दिया है, बनना है अब्दाल, यकीन नहीं आ रहा बात देखे ना, कितना जोर लगा रहा हूं कुरान हदीस से, कितने डाउन हो गए हम गुनाहों के अंदर अपने, अल्लाह की बातों में यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह के बंदो यही तो कमाल है, ये जो इसका नजारा हम आखिरत में देखेंगे जब आप उठेंगे ना, तो देखेंगे ये किसका इस्तकबार हो रहा है, तेरा नहीं मेरा क्यों, क्या पागल तुझे पता ही नहीं तू, तुझसे मेरा अमल क्या कराए थे, फिर यकीन करेंगे भाई हाय जन्नत हमारे पास पहुंच गए हम, देखें अभी नहीं आ रहा। अब क्या है कि सिर्फ ये फेल और ये हदीस ये कुरान हमें यकीन दिला रहे हैं कि तुम इस मुकाम पे पहुंच चुके हो, पहुंच चुके हो। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल दो दोस्तों, ऊंचा तो बोलो, यकीन नहीं आ रहा, ये नहीं है कि मैं अब्दाल कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि सिंह होते हैं, मैं गौस कैसे बन सकता हूँ, मैं मुजद्दिद कैसे बन सकता हूँ, नहीं यकीन आ रहा। गुनाहों को ना देखो, अगर उसकी रहमत को देखो, अगर हमारे गुनाहों को देखते तो हमें जिक्र पे लेके नहीं आता, ये नहीं सोचते कि इतनी मजली मस्जिद में जहां उसने अपना हमारा जिक्र करना है वो हमें लेके क्यों आता, ये तो उसकी रहमत और करम है कि हमें यहां ले, तो अब क्या हम सोच रहे अपने गुनाहों का, अब तो उसकी रहमत के समंदर में डूब जाओ। जहां जहां दुनिया के अंदर जो भी हमारे जिक्र अंदर बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए अर्ज कर रहा हूं ये बात, वो हल्का जिक्र में है, जहां भी बैठा है इस वक्त दुनिया की किसी कोने में मेरी आवाज जा रही है। इमाम शेरानी रहमतुल्लाह क्या कहते हैं आखिरी फिक्रे पे, उन्होंने क्या तशरीह की, देखें कितने बड़े बड़े इमामों के हवाले दे रहा हूं, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ तो आप कौस कुतब मकाम पे जा रहे हैं अल्लाह के फजल से, यकीन नहीं आ रहा। आप बाज दफा सुनेंगे इस चोर के, चोर कर आज बादशाह तू, ये कितने कितने वाकत पढ़ते हैं, कहते नहीं ये सक्का था, सक्का सक्का समझते हैं जो ये पानी पिलाते हैं हमारे यहाँ, सक्का कहते हैं ना उसको, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो तसव्वुर नहीं उसका, खैर एक नीचे कैटेगरी का आदमी होता है, पानी पिलाते भरता है, मश्क होती है उसको भर के, फिर लोग घरों में डालते हैं पानी बेचारा, उसके पेशे है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको बना दिया बादशाह। हम तो वही सक्का हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बादशाह बना दिया, इतने बड़े रुतबे दे दिए। शुक्र तो अल्लाह वालों का करो जिन्होंने रास्ते दिखा दिए, असल चीज से ये करो कि जो राहबर हमारे हैं जिन्होंने हम यहाँ तक पहुँचा दिया, उनका क्या एहसान उतार सकता है मुझे बता, क्या एहसान उतर असल साहब को कि बोल्टन की मस्जिद में बिठा के सबको वली बना दिया। सुबह ये है अल्लाह वाले, इसको कहते हैं अल्लाह वाले, ये दुनिया में काम आते हैं, हश्र में ये काम आएंगे, ये कोई यही लोग होंगे। अल्लाह कहेगा जा जा अपने महबूब को पकड़, कितने जन्नत में ले जाना है, वही अल्लाह का वली उठेगा, कहता है ये सारा गुरु भी मेरा जन्नत में भेज दो। शान होगी अल्लाह वालों की, माँ पर आप देखेंगे कैसे अल्लाह तुमको इजाज़ देगा बख्शिश की। और उसकी आज हमको गालियाँ देते हैं, फ्राड करते हैं, अल्लाह वालों के साथ तो ऐसी दुश्मनी ना करो यार। खुद अल्लाह ने कहा कि मेरे दोस्तों क्यों दुश्मनी करते हो, क्यों बकवास करते हैं, उनके साथ जिक्र भी करते हो, उनकी बगावतें भी करते हैं, उनके साथ फजूल बातें भी करते हैं, उनकी उनके उनके लिए गीबतें भी करते हो, एक शराफत है, अजीब अजीब ऐब हम लोगों में होना चाहिए ऐसे। जहाँ जन्नतें मिल रही हैं, जहाँ मुकाम मिल रहे हैं, इमाम शरानी कहते हैं आखिरी वो जो उस फिक्र है क्या था कि हाँ सुभान अल्लाह, कि उनकी मजलिस में जो बैठ गया यानी जो सोबत है औलिया में आ गया, वो बहुत वक्त रहते ही नहीं, बद वक्त रहा ही नहीं, इसका लफ्ज़ यही है, बहुत वक्त नहीं रहा। तो वहीं लिखते हैं इमाम शरानी कि इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा मैं जिक्र कर रहा था, कौन है इमाम शरानी, यासिर फारूकी नहीं है, कौन है इमाम शरानी की बात कर रहा हूँ, मेरा तो कह देंगे जी क्या बकवास कर रहा है, ठोकता रहता है, ये कर दो वो, ये इमाम शरानी की बात कर रहा हूँ, उनकी कश्फ की बात कर रहा हूँ, अल्लाह वाले कितने ऊँचे थे। तो कहते हैं मैं जिक्र में था, वो तो खुल के लिखते हैं ना सारी बातें, उन्हें किस चीज़ का डर है, जिससे मैंने आपको अल्लामा कश्मीर रहमतुल्लाह की बात बताई, सीधी साथ बात लिखने वाले हैं, यकीन करते हैं अपने इलम पर, अमल पर, अल्हम्दुलिल्लाह अमल पर इनको फख्र होता है इस चीज़ पर। कहते मैं बैठा तो मैं जिक्र में था, जैसे आप लोग जिक्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे बात सुने, मोहब्बत की बात करूँ आपसे, जब भी जिक्र का नाम है जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है, ठीक है ना। तो बैठे हुए थे तो कहते हैं मैंने क्या देखा जिक्र में एकदम, कि मेरी जो इर्द गिर्द जगह है सारी वो सब जाकिर हो गई, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जैसे आप बैठे हैं आपको क्यों पता, आप जैसे किसी जगह गए जिंदगी बैठे तो आप एकदम कश्फ हो जाए, आप देखें सब जिक्र शुरू हो गई, उससे पहले जिक्र नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई जाकिर हो गई। तो उनके अच्छा देखा ना जाकिर हो गई माशाल्लाह। तो उसके बाद कहते हैं कि सुबह तक क्या मैंने देखा कि सिर्फ वो जगहें जाकिर नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुआ कि सुबह तक मैंने देखा पूरी जमीन का खत्ता जाकिर हो चुका था। फिर बोलने सुबह या आप मैं और जिक्र करते हैं यही कैफियत होती है, यकीन आ रहा है नहीं आ रहा। अभी भी देखने गुनाहों को अपने वो बंदर हो गुनाहों को ना देखो, अल्लाह की रहमत को देखो, अल्लाह की रहमत को देखो कि हम आ गए तो हम ठीक हैं, गुनाह माफ। पहले शर्त जब आप आने की क्या हुई, अल्लाह आपको और मुझे उस वक्त लेकर आया जब हमारे गुनाहों को धो दिया है ना। आप बगैर वजू के आ सकते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, पहले वजू किया नहीं किया फिर नमाज पढ़ी ना, तो ये इबादत इसमें क्या है बात। अल्लाह कहता है इसमें वजू नहीं कराता, इसमें क्या कराता हूँ गुनाहों को धो के लाता हूँ। फिर बोलो सुबह पहले अपना इंतजाम करता हूँ फरिश्तों से कि इसके गुनाह साफ कर, क्यों कि ये उस मजलिस में जा रहे हैं जिनका नाम मैं अपनी मजलिस में लूंगा। जाहिर नहीं देखता कि भी वजू करके आगे नहा के आगे ना, उसने पहले गुनाहों को निकाल। आपको क्या पता कि मैं जब इस दरबार में आया हूँ, इस मस्जिद में जिक्र की नीचे आया हूँ, इस हल्के की नीचे आया, तो बिल्कुल साफ सुफाफ हो गया, बिल्कुल हल्का। बोलो सुभान अल्लाह, ये बात में यकीन आ रहा है, सब कुरान हदीस से बता रहा हूँ आपको, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग, देखें कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। आज कहने लगे कि मैंने देखा कि जमीन का सुबह देखा तो जमीन वो जो सारा जमीन जहाँ फैली थी वो सारी जाकिर हो गई, सारी जमीन जाकिर हो गई। वो कहते हैं कि वजह उसकी क्या है कि जाकिर जाकिर की आवाज जहां जहां पहुंचती जाती है, सुभान अल्लाह, जाकिर की आवाज जहां जहां पहुंचती जाती है वहां दायरा वसी होना शुरू हो जाता है, और फिर एक से एक लगकर वो जाकिर होना शुरू हो जाता है,
اس طرح ایک مجلس جو بیٹھتی ہے وہ ساری دنیا کو ذاکر کر دیتی ہے. اور فرماتے ذاکر ہی نہیں کرتی, جب ذاکر ہو جاتی تو سارا زندہ ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا پوری دنیا زندہ تھی, کوئی غفلت مجھے نظر نہیں ہے دنیا کی. یہ ایک مجلس ہے اللہ کے ذکر کی. امام شیرانی کی کتاب پڑھ لیں آپ, ایک مجلس. تو جو ایک مجلس ذکر کی بیٹھ کے پوری دنیا کو زندہ کر دے, اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہوگا. آج تو دعوت کریں میری, آپ کتنے مقامات دکھا رہا ہوں آپ کو, دیکھ لیں. نئے پہلو سے باتیں بتا رہا ہوں آپ ذکر کی, قسم خدا کی. ایک ذاکر اس کا وجود دنیا کا کتنا قیمتی ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے, تو وہ ڈیوٹی اوپر جو باہر نکلیں گے ادھر دھکے کھا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. عام آدمی یہاں تو اللہ نہیں دکھا سکتا کچھ, لیکن اگر ذکر کرنے والا ہے, اللہ نے توفیق اس کو دے دی ہے, چپک گیا ذکر کے ساتھ, لگ گیا ذکر کے ساتھ, ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا, بس مبارک ہو شخص کو. سبحان اللہ, مبارک ہو شخص کو. تو پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ حال ہے, تشہد اس کر رہے, اس بات کی کر رہے تھے نا کہ ان کے محفل میں آنے والوں کی بدبخت نہیں رہ سکتے, ولی اللہ کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے. تو فرمایا جب یہ حال ہے ایک ذکر کرنے والے مجلس کا, تو مجھے بتاؤ کہ اس حدیث میں جو کہا ہے کہ بدبخت آدمی رہے گا کیسے جو ان کے پاس چلا گیا, جبکہ ساری دنیا کو جو وہ زندہ کر دیتے ہیں, جو ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے تو وہ بدبخت رہے گا, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذاکر نہ ہو. بولے سبحان, بند کروں یا چلتا رہوں؟ ہمیں ابھی بہت باتیں ہیں, چلے ابھی باقی انشاءاللہ بعد میں. اللہ پاک ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے دوستوں, سنو, اب یہ عام مجلس ہے؟ یہ عام مجلس ہے؟ بولو نہیں, آواز نہیں آ رہی ابھی تک زور. یہ عام مجلس ہے؟ اسپیشل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس مجلس کے اندر آداب سیکھے. ہر چیز جب بھی انسان ضائع کرتا ہے نا کسی چیز کو, اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے روحانیت کی, ایک غور سے بات سنو, روحانیت کی جو چیز انسان ضائع کرتا ہے نا, مقامات بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس کے. ایک شخص بہت اونچا مقام تھا, مجھے, میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں, بہت اونچا مقام تھا, بڑے بلند پر تھا, بڑے اسباق تھے اس کے. کیا دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اوپر سے گرا ہے, کس طرح کے, تقریباً 10 منزل بلڈنگ تھی, اس بلڈنگ پہ وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی اور وہ اس سیڑھی سے گرا ہے اور زمین میں پاش پاش ہو گیا. دوسرے دن پتہ چلا کہ اس کے سارے مقامات ختم ہو گئے. یاد رکھیں کہ اللہ جب دیتا ہے اونچے مقامات, اس کی حفاظت بہت سخت ضروری چیز ہے. انسان اللہ نے بہت کرم کیا ہے, یہ ذکر میں بٹھایا ہے. ایک تو دو چیز کہ ناشکر نہ بننا کبھی, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز, اس مجلس کو, یہ اسپیشل مجلس ہے, خاص مجلس ہے, جس کی میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں چیزیں. تو باقی یہ چیزیں جو اہل دل ہیں, اہل نظر ہیں, وہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مجلس ہے کیا اور کیا کچھ ہے اس مجلس کے اندر, وہ تو دیکھتے ہیں. لیکن ہم اندھے ہیں, تو اس لیے ہمیں قرآن حدیث سے جو باتیں پہنچتی ہیں یا بزرگان دین سے جو پہنچتی ہیں, اس پہ ہمیں ویسے ہی یقین کر لینا چاہیے جیسے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو کم از کم اس مجلس کے اندر آداب کا خیال رکھیں. بے ادب سے ہمیشہ جو روحانی معاملات میں مار کھائی ہے اور جس کے جی درجے گرے ہیں, وہ سب بے ادبی کی وجہ سے گرے ہیں. یہ یاد رکھیں, اس میں ادب کا بہت خیال رکھا کریں, بہت زیادہ خیال رکھیں. ان مجالس کے اندر آئیں تو جو اس وقت آئیں جب دل میں آپ کا حشاش مشاق میں ذکر میں جا رہے ہیں, ذرا کی تنگی دل میں نہ ہو. یہ سب کو بتا رہا ہوں, جو بھی ذکر کے مجلس میں, جو اپنے اپنے گھروں میں عورتیں مرد سن رہے ہیں ذکر دنیا کے اندر, تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی اسی طرح ذکر میں بیٹھے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. با ادب ہوں, با وضو ہوں, خوشبو ہو, الحمدللہ جب آپ اس مجلس میں ہیں تو کوئی خوشبو استعمال کر کے آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں اور باقاعدہ اہتمام ہے سنت کر کے آئیں. الحمدللہ اسپیشل مجلس ہے جس میں آپ کو پتہ ہے غوث اور کتب بننا ہے. امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس مجلس میں آج میں جا رہا ہوں تو الحمدللہ کوئی رتبہ ہی لے کے نکلوں گا. ایسی تو اور کیا, جب آپ کسی ٹکے کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو پورے نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج میں ویزا لگوا کے ہی آؤں گا, یار بے شک مجھے قدموں میں پڑنا پڑے, چاہے مجھے یہ کرنا پڑے, چاہے میں وکیل یہ کروں, فلاں منسٹر لے کے جاؤں. ہے یا نہیں کرتے ایسے؟ کرتے نہیں کرتے. اس بادشاہ کے پاس جانا ہے خالی حقیقی کے پاس, اور یہ سوچ کے خالی ہاتھ آئیں گے؟ نہیں, وہاں تو اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق توقع لے کے جائیں کہ آج میں نے پوچھا مقام لے کے آنا ہے, ورنہ ذکر کر لوں میں, اللہ تعالیٰ مجھے دے مقام وقت میں اس مقام سے میں اٹھوں. اس کی تیاری کر کے گھر سے نکلے, ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلے. اللہ اتنی بڑی توفیق تو مجھے اپنی مسجد میں بھیج رہا ہے, میں آ رہا ہوں. الحمدللہ جتنا جو قدر کرے گا ایسی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خاص مجالس ہیں, اسی قدر اللہ تعالیٰ قدر سے نوازتا ہے انسان. نقطہ یاد رکھ لیں میرا, بہت اہتمام سے دل کے ساتھ وقت سے پہلے جب بھی ذکر کی مجلس میں, صبح ہو شام ہو دوپہر ہو, جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مجلس جمی ہے, مجلس سے مراد کیا ہے کہ بے شک تین آدمی بیٹھے ہیں, دو بیٹھے ہیں, اس میں سارے ہی کچھ یہ واقعات ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہیں جمعرات میں, نہیں, جہاں بھی شیخ بیٹھا ہے آپ کا مجلس قائم ہو گئی ہے, شیخ بیٹھا ہے تین بیٹھ گئے, وہی مجلس بن گئی ہے جس کے لیے میں نے آپ کے لیے ساری ڈسکرپشن دی ہے جو تشریف. اب آپ کی قسمت ہے دن میں تین دفعہ لے لیں, چار دفعہ لے لیں, پانچ دفعہ, یہ تو لاٹری اللہ کی طرف سے. حج مجلس میں جب صاحب حیثیت ہے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے اٹھا کرے الحمد للہ. یہ قدر کریں اس چیز کی بھائی, دیکھیے پھر اس قدر سے اللہ پاک ہمیں کیسے نوازتا ہے. صدقہ دے اٹھے سبحان اللہ تعالیٰ, میں صدقہ دیتا ہوں بد نظری سے بچوں, تم نے مجھے اس مجلس میں بٹھا دیا, نواز دیا اس چیز سے, منہ بنائیں کر کے جائیں تھک گئے اور ٹانگیں تو فنا, یہ نہیں, بہت ادب سے. دوسری چیز, اس مجلس میں آئے باقاعدہ وضو کر کے, ہمت کر کے, بہت ہی زیادہ کوئی بیمار ہے, شوگر ہے, پریشانی ہے, بار بار وضو ٹوٹتا ہے, وہ تو ایک معذرت ہے, معذور ہے, لیکن عام حالت میں ایک تندرست آدمی ہے یا طاقت رکھتا ہے, بالکل نہ اس مجلس مجھے ناگوار گزرتا ہے. اور یاد رکھیں جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا بس کا, اگر اس کو نیند آئے تو پوری بس ڈوب جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے. اگر مجلس کا جو امیر ہے اس کے دل میں بال آ جائے تو پوری مجلس خراب ہو جاتی ہے. اس چیز کا خیال رکھو, چلتی اسی کے زور پہ. ڈرائیور چلاتا ہے نا گاڑی چلاتا ہے, یا آپ چلاتے ہیں, کون چلاتا ہے؟ اگر ڈرائیور کو نیند آئے کیا ہوتی ہے؟ یہی بھی ڈرائیور کا خیال رکھیں, کوئی چیز اس کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے, جو اس ڈرائیو کر رہا ہے اس کی, اس پہ کوئی ناگوار چیز نہ ہو, اس کے سامنے ہر چیز سنت کے مطابق الحمدللہ, اس کا دل خوش ہوگا, فیض دبا کے پہنچے گا انسان کو, دبا کے فیض پہنچے گا. بات سمجھے, مجھ کے مجلس میں اٹھے پیشاب کے لیے, اس کے لیے وضو کے لیے, فلاں کے لیے, بیچ میں مجلس میں اٹھ کے جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں اللہ کی پکڑ کا کہ کیا تماشا سمجھ لے اس کو, یہ مذاق ہے, یہ مجلس مذاق ہے. اللہ کے بندہ اور آنکھ کھل جائے تمہیں پتہ ہے کتنی روحیں اس مجلس میں بیٹھی ہوتی ہیں, کیسے کیسے ملائکس یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, لانتے بھیجتے ہیں اس شخص پہ جو مسجد سے اٹھ کے جاتا ہے, کہ یہ شخص مردود, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے یہاں بلایا اور یہ اٹھ کے جا رہا ہے لات مار کی مجلس میں تکی کی بات کے لیے. خبردار, اگر آئے ہو با عزت بن کر آؤ, با عزت جاؤ یہاں سے, پہلے وقت پہ آؤ, سن کے کہ سنیں گے حضرت کی بات, سنیں گے کہ وہ چیزیں آج جو میں نے بتائی ہیں باتیں, اس سے پہلے سنی آپ نے, سنی آپ نے, پھر آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہر چیز نہیں ملتی یہاں پر, کوئی ریپیٹ ہوتی ہے بات وہاں سے بتائیں, کوئی ریپیٹ ہوتی ہے بات, ہر چیز نہیں ملتی. پھر یہ کیا نخرا ہے کہ جناب آدھی مجلس میں آ رہا ہے, کوئی پیچھے والی مجلس میں آ رہا ہے, بغیر کسی عذر کے, نہ عذر تو ہے, وہ جانتا ہے کہ شری عذر ہے بیچارہ, کچھ لیٹ ہو گیا, پریشان ہے, یا کہیں امامات ہے, یا کہیں کچھ معاملات اور ہیں, لیکن نخرے کے ساتھ آنا وہ اللہ کی ذات جانتی ہے, نخرا نہیں چلتا, یہ اس جگہ پہ نخرا نہیں چلے گا, ٹکرا نہیں چلے گا بالکل, یہاں تو بالکل بندہ بن کے انسان ہے, جھکتا ہوا آجی کے ساتھ, توازے کے ساتھ, کسی کے لیے نہیں آ رہا, میرے لیے نہیں آ رہا, بلکہ کیا ہے, اللہ کے دربار میں بھیک مانگنے جا رہا ہے, اور کون سی, آخرت کے مقامات لینے جا رہا ہے, کہ میں اللہ کا ولی بننے جا رہا ہوں, میں نے آج ولایت لے کے آنی ہے وہاں سے. اب تو یہی ان کی بات ہے جس مجلس میں آ رہے ہیں آپ, تو ادب سب سے بڑی چیز ہے, با ادب آئیں اور الحمدللہ بے دھڑک مانگے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے, خوب مانگے یہاں پہ مانگنی, اللہ تعالیٰ کے دیتا ہوں میں ذکر کرنے والوں کو, اور کیسے دیتا ہوں کہ بغیر مانگے دیتا ہوں, کہ تمہیں تکلیف بھی نہیں, تم مجھ سے مانگو, میں تم بغیر مانگے ادا کروا دیتا ہوں. تو بہرحال سب سے بڑی چیز ادب ہے, ادب کے ساتھ آئیں, خوش بلا کے, تمیز کے ساتھ, ادب کے ساتھ بیٹھیں, اور ہلکے میں بیٹھیں, یہ نہیں کہ اس کونے میں بیٹھا ہے, کہ اس کونے میں بیٹھا ہے, کہ ادھر بیٹھا ہے, نہیں, ادب کے ساتھ, جھک کے ساتھ, ہلکے میں تشریف رکھیں بیٹھیں, سوچ کے کہ بھائی بھیک آنے والی اللہ کی طرف سے, ملائک اترے ہوئے ہیں, اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے, اور یہ مجالس ہو رہی ہیں, سکینہ اتر رہا ہے, رحمتوں میں ڈھپے جا رہے ہیں, گناہ ہمارے ختم ہو چکے ہیں, اس وقت پاک صاحب بیٹھے ہیں, بالکل بدلے ہیں ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ سب تو ہو رہا ہے, یہ سب تو ہو رہا ہے, یہاں گناہ کو سوچنے کی فضل بات ہے, یہاں بیٹھ کے روئیں گے یار میں یہ گناہ کی, یہ تو رونے کی ضرورت نہیں, تو ہنسنے کی جگہ ہے ماشاء اللہ, مانگنے کی جگہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے چیز کی.